सवाने हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह अव्वल नवर अल्लाहु मरकदहु तसनीफ़ रज़िया दर्द साहिबा। खुदा का एक प्यारा बंदा हिंदुस्तान की एक छोटी सी बस्ती में अपनी दुकान में बैठा मरीज़ों को देख रहा था और दवाई दे रहा था। अचानक डाकिया आया और इस नेक आदमी के हाथ में एक तार थमा दिया। खुदा के प्यारे बंदे ने जब तार खोला तो पता चला कि ये खुदा के मसीह मौऊद का तार है। खुदा के मसीह मौऊद ने लिखा था, बिला तवक्कुफ दिल्ली पहुंचो। खुदा का ये बंदा तार पढ़ते ही उठ खड़ा हुआ, सब मरीजों को छोड़ा, घर वालों को भी इत्तला ना दी और सीधा रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ा। जेब में हाथ डालकर ये भी ना देखा कि दिल्ली जाने के लिए किराया भी है या नहीं। खुदा के इस प्यारे बंदे के जहन में एक ही बात थी कि खुदा के मसीह मौऊद ने कहा है कि कोई तवक्कुफ नहीं करना और दिल्ली आना है, इसलिए अगर घर गया तो देर हो जाएगी, पैसे लेने गया तो देर हो जाएगी, किसी को बताने लग गया तो देर हो जाएगी। खुदा का ये प्यारा बंदा कादियान से अमृतसर पहुंच गया। वहां जाकर मालूम हुआ कि जेब में जितने पैसे थे वो सब खत्म हो गए और अब अमृतसर से दिल्ली जाने का किराया भी नहीं। मगर खुदा के इस प्यारे बंदे को किसी की परवाह नहीं थी, इसको अपने खुदा पर यकीन था। अमृतसर के स्टेशन पर गाड़ी आने में कुछ देर थी। खुदा का प्यारा बंदा गाड़ी के इंतज़ार में स्टेशन पर टहल रहा था। सारी दुनिया जहान का मालिक खुदा अपने प्यारे बंदे की तरफ देख रहा था। खुदा ताला को अपने इस प्यारे बंदे पर बहुत प्यार आया जो कि उसके मसीह मौऊद की फरमाबरदारी में इतना दीवाना और बेकरार था। खुदा ने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया कि उसके प्यारे बंदे के पास दिल्ली का टिकट और सफ़र खर्च की रकम भेज दी जाए। अचानक खुदा के प्यारे बंदे ने देखा कि रेलवे स्टेशन पर एक शख्स उसकी तरफ बढ़ता आ रहा है। जब वो करीब आया तो खुदा के प्यारे बंदे ने उसे पहचाना। ये एक हिंदू रईस था। इस हिंदू ने अर्ज़ किया कि हजूर, मेरी बीवी सख्त बीमार है, इसे जाकर ज़रा की ज़रा देखें। खुदा के प्यारे बंदे ने जवाब दिया कि मैं खुदा के मसीह मौऊद के बुलावे पर दिल्ली जा रहा हूँ, मैं देर नहीं कर सकता, कहीं आ जा नहीं सकता। इस हिंदू रईस ने जवाब दिया, मेरा घर बिल्कुल नज़दीक है और अभी गाड़ी आने में कुछ देर बाकी है, मैं गाड़ी के आने से पहले पहले आपको वापस छोड़ जाऊंगा। चुनाचे खुदा के प्यारे बंदे ने हामी भर ली। हिंदू रईस खुदा के प्यारे बंदे को गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले गया और बीवी का इलाज करवाने के बाद वापस स्टेशन पर छोड़ गया और खुदा के प्यारे बंदे के हाथ में दिल्ली का टिकट और कुछ नकद रकम थमा दी और बड़े अदब से सलाम करके चला गया। खुदा के पाक बंदे ने अपने रब का शुक्र अदा किया और गाड़ी में बैठकर खुदा के मसीह मौऊद के पास पहुंच गया। प्यारे बच्चों, जानते हो खुदा का ये प्यारा बंदा कौन था? खुदा का ये प्यारा बंदा जमात अहमदिया के पहले खलीफा हज़रत हाफिज़ हाजी हकीम मौलाना नूरुद्दीन साहब थे, जो खुदा के मसीह मौऊद व महदी मौऊद हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम के बुलावे पर कादियान से दिल्ली तशरीफ़ ले गए थे। हजूर का ख़ानदान। आपका असल नाम नूरुद्दीन था। 1841 के करीब भेरे के महल्ले मेमारा में पैदा हुए। आपके वालिद साहब का नाम हज़रत हाफिज़ ग़ुलाम रसूल साहब और वालिदा साहिबा का नाम नूर बख्त साहिबा था। आपका शजरा नसब हज़रत उम्र फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से मिलता है। आपके बुज़ुर्गों में वली, आलिम, बादशाह, सूफ़ी, काजी, शहीद, हर किस्म के बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। आपका ख़ानदान हमेशा से ही एक आला शान वाला रहा है। पाकिस्तान में आपके अफराद ख़ानदान आज तक शहज़ादे कहलाते हैं। आपके वालिद को कुरान से ख़ास इश्क था। कुरान ही ज़िंदगी का प्यारा मशगला था। हज़ारों रुपए के कुरान ख़रीदते, मुल्क के कोनों में फैला देते। बम्बई के एक ताजिर का कहना है कि मैं 30,000 रुपये के कुरान मजीद ख़रीद कर भेरे गया, आपने सब खरीद लिए। बड़ी बेटी की शादी पर जहेज़ में आपने सबसे ऊपर कुरान रख दिया, फरमाया हमारी तरफ से यही है। आप बहुत अच्छे घुड़सवार थे, घोड़ियों का बहुत शौक़ था, खुदा ने मालो दौलत दे रखी थी, शहाना तबीयत के इंसान थे, खुशी चेहरे से टपकती थी, बच्चों से बड़ा प्यार फरमाते थे, बड़े से बड़े खर्च की परवाह ना करते थे, बच्चों की अच्छी सेहत का बहुत ख्याल रखते थे। آپ کا دسترخوان سیب انار انگور یعنی اچھے پھلوں سے بھرا رہتا تھا۔ بچوں کی دینی رنگ میں تربیت کرتے تھے، تعلیم کا بہت شوق تھا۔ مدن چند ایک ہندو عالم تھا، وہ کوڑھ کی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ یہ بیماری ایسی ہوتی ہے کہ گاؤں میں ایک شخص کو لگے تو سارا گاؤں بیمار ہو جاتا ہے، اس لیے لوگوں نے شہر سے باہر اس کے رہنے کے لیے مکان بنوا دیا۔ آپ نے اس کے پاس اپنے ایک بیٹے یعنی حضرت خلیفۃ المسیح الاول کے بھائی کو پڑھنے کے لیے بھیجا۔ لوگوں نے کہا، کیا خوبصورت بچہ ہے، کیوں زندگی خطرے میں ڈالتے ہو؟ آپ نے جواب دیا، مدن چند جتنا علم پڑھ کر اگر میرا بیٹا کوڑی ہو گیا تو مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ اچھا لباس پہنتے، خاص قسم کی لنگی استعمال کرتے جس پر تلا ضرور ہوتا، جو آپ کی بیٹیاں تیار کرتی تھیں۔ آپ اس پر فخر کرتے کہ میری بیٹیوں نے تیار کی ہے۔ آپ کے 7 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام نور بخش صاحبہ تھا، جو اپنے خامن کی طرح بہت نیک عورت تھیں۔ نماز کی پابند، باورچی خانے میں جائے نماز کھونٹی پر لٹکا رہتا، وقت ہوتا تو وہی نماز پڑھ لیتیں۔ دین سے بہت واقف تھیں، قرآن مجید کو بہت سمجھتی تھیں۔ 13 برس کی عمر میں آپ نے قرآن مجید پڑھانا شروع کیا، ہزاروں نے آپ سے قرآن پڑھا۔ آپ کو بہت شوق تھا کہ آپ کی اولاد قرآن مجید سے محبت رکھے، چنانچہ سب بچوں کو قرآن سے خاص محبت تھی۔ 85 سال کی عمر تک پڑھاتی رہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول سے بہت پیار کرتی تھیں۔ بچپن کا زمانہ، حضرت خلیفۃ المسیح الاول کا حافظہ بہت ہی اچھا تھا، حتیٰ کہ آپ کو دودھ چھوڑنا بھی یاد تھا۔ اس پر فضل یہ ہوا کہ ایسے گھر میں آنکھ کھلی جہاں ہر وقت اللہ اور رسول کا ذکر رہتا تھا۔ شروع میں آپ نے اپنی والدہ صاحبہ ہی کی گود میں قرآن اور انہیں سے پنجابی زبان میں دین کی کتابیں پڑھیں، پھر مدرسے میں داخل ہوئے۔ نماز کا شوق مدرسے کی پڑھائی کے وقت سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ آپ کے استاد دوسرے بچوں کے ساتھ آپ کو نماز پڑھنے کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ نماز کے ساتھ آہستہ آہستہ دعاؤں کا شوق بھی آپ کے دل میں پیدا ہو گیا۔ ایک دفعہ ایک لڑکے نے وضو کر لینے کے بعد سب کو کہا کہ نماز کون پڑھتا ہے، یہ کہہ کر اس نے اپنی پیشانی ایک کچی دیوار کے ساتھ رگڑی، جس سے مٹی کا نشان ماتھے پر نظر آنے لگا۔ اس طرح اس نے سب لڑکوں کو نماز نہ پڑھنے اور جھوٹ بولنے کی عادت ڈالنے کی کوشش کی، مگر آپ پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ شوق اور بڑھ گیا۔ مدرسے کے زمانے میں آپ کو کتابیں جمع کرنے کا شوق ہو گیا، اور یہی آپ کا بچپن کا شوق تھا۔ عمر بھر کبھی کوئی کھیل نہیں کھیلا، صرف ایک ہی کھیل کھیلا ہے، اور وہ تیرنا ہے۔ آپ کو تیرنا خوب آتا تھا، بعض دفعہ بڑے بڑے دریاؤں میں بھی تیرتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ گھوڑے کی سواری کا بھی شوق تھا۔ خود فرماتے ہیں، ہم چھوٹے تھے، ہمارے والد صاحب لگام چھپا دیتے تھے تا چھوٹے بچے تیز گھوڑوں پر سوار ہو کر گر نہ جائیں، مگر ہم گھوڑے کے گلے کی رسی ہی سے گھوڑے کو چلا لیتے تھے۔ آپ کے وطن میں پنجابی بولی جاتی تھی، پہلی دفعہ آپ نے ایک ہندوستانی سپاہی کو اردو زبان میں بات کرتے سنا، جسے آپ نے بے حد پسند کیا۔ 1853 کے قریب جب آپ کی عمر 12 سال ہوئی، آپ کو اپنے بڑے بھائی مولوی سلطان احمد صاحب کے پاس لاہور آنا پڑا، جنہوں نے مدرسہ کھول رکھا تھا۔ یہاں آ کر آپ کو ایک بیماری ہو گئی، اس وقت آپ کے دل میں طبی تعلیم کا شوق پیدا ہوا، مگر آپ کے بھائی صاحب نے آپ کو طب پڑھانے کی بجائے منشی محمد قاسم صاحب کے پاس فارسی کی تعلیم کے لیے بھجوا دیا۔ 2 سال کے بعد آپ بھیرے واپس آ گئے۔ آپ کے بھائی صاحب نے عربی کی تعلیم دینی شروع کی، آپ نے بہت جلد عربی کی کتابیں پڑھنی شروع کر دیں۔ 1857 میں کلکتے کے ایک تاجر آپ کے مکان میں آئے اور آپ کی پڑھائی کے بارے میں کہا کہ آپ جو اس کو دوسری کتابیں پڑھاتے ہیں، خدا کی کتاب کیوں نہیں پڑھاتے، اور اس کے ساتھ ہی ایک باترجمہ قرآن شریف آپ کو دے دیا۔ چنانچہ آپ کے بھائی صاحب نے آپ کو وہی پڑھانا شروع کر دیا۔ اس وقت سے آپ کو قرآن مجید سے محبت پیدا ہو گئی، جو کہ ساری عمر نہ صرف قائم رہی بلکہ مسلسل بڑھتی رہی۔ 1855-56 میں روم اور روس کی لڑائی جاری تھی، آپ ان دنوں اپنے وطن بھیرے میں تھے۔ آپ کے سب بہن بھائی، ان کے بچے سب ایک رات گھر میں جمع تھے، اور سوائے آپ کے سب شادی شدہ تھے۔ آپ نے اپنے ابا امی سے پوچھا کہ کتنے مسلمان مارے جاتے ہیں۔ آپ کے گھر میں اللہ کے فضل سے بہت رونق ہے، اگر مجھے اللہ کی راہ میں قربان کر دیں تو بہت ثواب ہوگا، اتنے سارے بچوں میں سے ایک کو اللہ کے رستے میں دے دینا کوئی بڑی بات نہیں، آپ کو خدا کے ہاں سے بہت ثواب ملے گا۔ مگر آپ کی والدہ صاحبہ نے کہا کہ میں اپنی زندگی میں یہ بات کیسے برداشت کر سکتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ جب میں مروں آپ میرے پاس ہوں۔ چند ہی دنوں کے بعد آپ کے ابا امی کے سامنے ہی باقی بچے فوت ہونا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ سارا گھر خالی ہو گیا۔ आप इन दिनों जम्मू में थे, एक दफा वतन आए, एक कमरे में सोए हुए थे कि आपकी वालदा साथ के कमरे में आईं और इतनी जोर से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा कि आपकी आंख खुल गई। आपने अपनी वालदा को सब्र की हिदायत की और अर्ज किया, अम्मा जान आपको मालूम है कि घर क्यों खाली हो गया है? फरमाया, खूब याद है, ये उस गलती का नतीजा है जो मैंने आपकी बात का इनकार किया था, और अब तो मैं ये भी जानती हूँ कि मैं उस वक्त मरूंगी जबकि तुम मेरे पास नहीं होगे। चुनाचे ऐसा ही हुआ। 1858 के करीब जब आपकी उम्र 18 साल की थी, आपने नॉर्मल स्कूल रावलपिंडी में दाखिला लिया और इतनी अच्छी कामयाबी हासिल की कि आप पिंड दादिन खान के अंग्रेजी स्कूल के हेडमास्टर बना दिए गए। 4 साल तक हेडमास्टर रहे। जब आप हेडमास्टर थे तो एक दफा वहाँ इंस्पेक्टर स्कूल आ गए। आप उस वक्त खाना खा रहे थे, आपने उन्हें भी खाने की दावत दी, लेकिन उन्होंने दावत कबूल करने के बजाय कहा कि आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं इंस्पेक्टर हूँ और मेरा नाम खुदा बख्श है। आपने जवाब दिया, बहुत ही नेक आदमी हैं, मास्टरों के यहाँ खाना नहीं खाते। ये कहकर आप फौरन अपनी जगह पर बैठ गए और वो बेचारा अपना घोड़ा खुद ही पकड़े इंतजार करता रहा कि शायद अभी ये किसी लड़के को मेरा घोड़ा पकड़ने के लिए भेज दें। जब आपने कोई लड़का ना भेजा तो उसने खुद कहा कि किसी लड़के को तो भेज दें जो मेरा घोड़ा पकड़ ले। आपने जवाब दिया, आप मदरसों के घर का खाना तो खाते ही नहीं, इसको रिश्वत समझते हैं, फिर हम लड़के को घोड़ा पकड़ने के लिए कैसे कह दें, क्योंकि फिर आप कहेंगे कि इसको बांध भी दो, घास भी डाल दो। इतनी देर में उसके नौकर आ गए, उन्होंने घोड़े को बांधा, खाना तैयार किया। इसने कहा, मैं लड़कों का इम्तिहान लूंगा। हजूर लड़कों को तैयार करके अलहदा जा बैठे और वो खुद ही इम्तिहान लेता रहा। बाद में कहने लगा कि सुना है आप बड़े काबिल हैं और बहुत उम्दा सनद हासिल की है, शायद इसीलिए इस कदर फखर है। आपने जवाब दिया, हम इस छोटे से कागज को खुदा नहीं समझते। और एक शख्स को कहा कि भाई जरा इस बुत को तो लाओ, और उसके सामने ही अपनी सनद का कागज फाड़ डाला और साबित कर दिया कि किसी चीज को खुदा का शरीक नहीं समझते। उसे बहुत अफसोस हुआ और वो कहने लगा कि आपका ये नुकसान मेरी वजह से हुआ है। आप फरमाते थे, जब से मैंने सनद फाड़ी है तब ही से मेरे पास इतना रुपया आता है जिसकी कोई हद नहीं। 24-25 साल की उम्र में आप खुदा के पहले घर की जियारत के लिए रवाना हुए। बम्बई से रवानगी के वक्त अपने वतन के 5 आदमी हज को जाते हुए मिल गए, जिनकी वजह से आपको जहाज में बड़ा आराम मिला। मक्का मौजमा की बरकत वाली जमीन तक पहुंचने से पहले ही रास्ते में अल्लाह ताला की मदद के कई वाकयात पेश आए। आपने किसी से सुना था कि बैतुल्ला नजर आते ही जो दुआ की जाती है जरूर कबूल हो जाती है। आपने बैतुल्ला पर नजर पड़ते ही ये दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह, मैं तो हर वक्त जरूरतमंद हूँ, मैं कौन कौन सी दुआ मांगू? बस मैं यही दुआ मांगता हूँ कि जब मैं जरूरत के वक्त जो कुछ तुझसे मांगू तो उसे कबूल कर लिया कर। उस मुबारक वक्त की ये दुआ खुदा के फजल से ऐसी शानदार रंग में पूरी हुई कि हैरत आती है। बड़े बड़े आलिमों से आपकी बड़ी बड़ी बहसें हुई और दुआ की बरकत से आप हमेशा कामयाब हुए। मक्के में हजूर ना सिर्फ खुद पढ़ते थे बल्कि दूसरों को भी अपने इल्म से बहुत फायदा पहुंचाते। वहां आपको डॉक्टरी की तरफ भी तवज्जो पैदा हो गई, मगर मसरूफियत की वजह से ज्यादा वक्त ना दे सके। मक्के में आप 1.5 साल तक रहे, इसके बाद मदीने का इरादा कर लिया। मदीने पहुंचते ही आप हजरत शाह अब्दुल गनी मुजद्दी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने एक अलहदा कमरा रहने के लिए दिया। यहाँ आप सिर्फ मदीने की बरकतों और हजरत शाह अब्दुल गनी मुजद्दी रहमतुल्लाह अलैह के इल्म से फायदा उठाने के लिए आए थे, सिर्फ फारिग वक्त में एक कुतुब खाने में तशरीफ ले जाते। दौरे तालिब इल्मी के चंद दिलचस्प वाकयात। हुजूर एक दफा एक अच्छे उस्ताद की तलाश में वतन से दूर चले गए। ऐसी हालत हो गई कि 3 दिन हो गए और खाना ना मिल सका। एक दिन मगरिब के वक्त एक बैतुल जिक्र में गए, किसी ने भी ना पूछा, सब नमाज पढ़कर चले गए। आप हैरान और भूख से बदहाल वहां बैठे थे कि बाहर से आवाज आई, नूरुद्दीन नूरुद्दीन, ये खाना आकर जल्द पकड़ लो। आप गए तो एक ट्रे में बड़ा पुरतकल्लुफ खाना था, आपने फौरन पकड़ लिया और सैर होकर खाया। आप फरमाते हैं कि मैंने किसी से नहीं पूछा कि ये किसने भेजा है और कहां से आया है, क्योंकि मुझे इल्म था कि ये खुदा ने भेजा है। मैंने खाने का बर्तन बैतुल जिक्र की दीवार के साथ लटका दिया। जब मैं 8-10 दिन के बाद वापस उस बैतुल जिक्र में आया तो वो बर्तन वहीं लटका हुआ था। इससे मुझे यकीन हो गया कि ये खाना गांव के किसी आदमी का नहीं बल्कि खुदा ताला ने ही भिजवाया है। आप तालीम हासिल करने के लिए लखनऊ गए। वहां पर रहने को तो एक मकान मिल गया, मगर खाना पकाने का इंतजाम खुद करना पड़ा। रोटी का वक्त आया तो चूल्हे में आग जलाई, उस पर तवा रखा। अब ख्याल आया कि रोटी गोल किस तरह पकाई जाए। आखिर सोच सोच कर इसका हल ये निकाला कि आटे को बहुत पतला घोल लिया और एक बर्तन के जरिए गरम तवे पर बगैर कोई घी वगैरह डाले खूबसूरत दायरे की शक्ल में आटा डाल दिया। जब ये रोटी करीबन आधी पक गई तो ख्याल आया कि इसको उल्टाया जाए। रोटी को उल्टाने की कोशिश की तो उसमें नाकामी हुई। चुनाचे ये तरकीब सोची कि ऊपर वाले हिस्से को पकाने के लिए तवे को चूल्हे से उतार कर आग के सामने रख दिया। जब ऊपर का हिस्सा भी अच्छी तरह पक गया तो अब रोटी को तवे से उतारने का मसला सामने आया। जब किसी तरह ना उतरी तो चाकू निकाल लाए और उससे रोटी उतारने की कोशिश की, मगर रोटी ने इस तरह भी तवे से उतरने से इनकार कर दिया। अब आप परेशान हुए और घर से बाहर निकलकर आसमान की तरफ मुंह उठाकर दुआ मांगी, ऐ खुदाया, एक जाहिल के सुपुर्द रोटी पकाने का काम करना अपने रिस्क को जाये करना है। मैं नालायक हूँ, मुझे क्या पता रोटी पकाना क्या होता है। चुनाचे खुदा ताला ने आपकी दुआ सुन ली और जिस उस्ताद से आप पढ़ते थे उसी के घर रोटी खाने का इंतजाम हो गया। आप तालीम हासिल करने के लिए मदीना मुनवरा में मुकीम थे कि एक दिन किसी वजह से जोहर की नमाज बाजमात आपको ना मिल सकी। आपको शदीद रंज हुआ। आपने सोचा ये इतना बड़ा गुनाह है कि ये बख्शिश के काबिल ही नहीं। खौफ के मारे आपका रंग जर्द पड़ गया। मस्जिद के अंदर दाखिल होने से भी डर लगने लगा। आप मस्जिद के दरवाजे के बाहर पहुँचे तो दरवाजे पर एक आयत लिखी देखी जिसका मतलब ये था कि ऐ खुदा के बंदो, अगर तुम कोई गुनाह कर बैठो तो अल्लाह की रहमत से मायूस न हुआ करो, वो बहुत ही बख्शने वाला और रहीम है। इस आयत को पढ़कर आपकी कुछ ढारस बंदी, फिर भी आप डरते हुए और हैरत ज़दा होकर घबराहट की हालत में मस्जिद में दाखिल हुए और नमाज पढ़नी शुरू की। नमाज में आपने गिड़गिड़ाकर ये दुआ मांगी, या इलाही मेरा ये कसूर माफ़ फरमा दे। इससे मालूम होता है कि नमाज बाजमात कितनी जरूरी चीज है और आप इसके कितने पाबंद थे। 1868-69 में आप दोबारा मक्के तशरीफ ले आए। हज के महीने थे। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक कदा के रस्ते से मक्के में दाखिल हुए। अल्लाह के घर की बरकतों से मालामाल होकर आप मक्का मौजमा से जद्दा और जद्दा से बजरिया जहाज बम्बई वापस आ गए। आपकी उम्र 30 साल के करीब थी जब आप मक्के से वापस आकर अपने वतन भेरे में रहने लगे। आपके वतन के आलिमों ने आपके दीनी इल्म का बहुत मुकाबला करना चाहा और इल्म के मैदान में आपको हराने की कोशिश करनी चाहिए। जब नाकाम हो गए तो आपको कत्ल करने का इरादा कर लिया। लोगों को आपके खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। आपकी मुखालफत का इतना जोर हुआ कि एक शख्स जो आपका दूध शरीक भाई था उसने आपके दुश्मनों से कहा कि मैं नूरुद्दीन को छुरी मारकर खत्म कर दूंगा। आपको भी पता चल गया और एक रात इशा की नमाज के बाद आप उसके घर चले गए। उसकी माँ का चूंकि आपने दूध पिया था इसलिए वो आपसे पर्दा तो करती ही ना थी। आप उनके घर जाकर लेट गए। सबने समझा कि आप सो गए हैं। आपके दिल में ये ख्याल था कि देखें ये किस तरह छुरी मारेगा। जब आधी रात का वक्त हुआ तो उसकी माँ ने आपको जगाया और कहा, बेटा तुम अपने घर जाओ। आपने कहा, मैं यहीं सोऊंगा क्योंकि आधी रात तो गुजर गई है। उसने कहा, नहीं तुम अपने घर जाकर सो। आपने कहा, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मेरे दूध शरीक भाई को भी मेरे साथ भेजो ताकि वो मुझे मेरे मकान तक छोड़ आए। वो आपके साथ चल पड़ा। आपने जानबूझकर उसको पीछे रखा और खुद आगे आगे चले, लेकिन उसने कुछ ना किया। फिर जब आप घर के दरवाजे पर पहुंचे तो घर की सीढ़ियों के ऊपर खड़े होकर उसको नीचे की सीढ़ी पर खड़ा करके बातें करने लगे ताकि वो इत्मीनान से छुरी मार सके। लेकिन वो इस कदर घबरा गया कि उसने आपसे कहा कि आप इजाजत दें, मैं वापस जाता हूँ। जब कत्ल के इरादों में भी नाकामी हुई तो मौलवियों ने आपको भेरे से निकाल देने की तजावीज सोचना शुरू कर दी। नानबाई और हुजाम पर दबाव डाला कि वो आपका बायकॉट कर दें, लेकिन वो अपनी जगह पर अड़े रहे और किसी की बात ना मानी। मौलवी ज्यादा होने के बावजूद आपसे डरते थे। जब भी इकट्ठे बैठते आपको बुरा भला कहते, मगर बाज दफा जो ही उनकी नजर आप पर पड़ती तो बिल्कुल खामोश हो जाते और आपके सामने आपके खिलाफ कोई लफ्ज भी ना कह सकते। वो दिलों में मानते थे कि आप बहुत बड़े आशिक़े रसूल हैं। कहा करते थे कि दुश्मनी के बावजूद हम इनको वली कहते हैं। हजरत मौलवी साहब ने भेरे में आते ही कुरान और हदीस पढ़ाना शुरू कर दिया। शुरू में आपने हदीस की किताब मिश्कात पढ़ाना शुरू की। ये दरस आपकी खानदानी मस्जिद में होता था। आपके वालिद साहब भी आपके दरस में शामिल हुआ करते थे। इसके अलावा दूसरों की खिदमत के लिए एक अस्पताल शुरू कर दिया। गरीबों को मुफ्त दवा देते। आहिस्ता आहिस्ता मरीजों का हजूम आपके पास जमा हो गया। आपके अस्पताल की ये खास बात थी कि ये एक मुकम्मल स्कूल भी था जिसमें कुरान और हदीस और दूसरे इल्म भी पढ़ाए जाते थे। भेरे में आपका अस्पताल एक वसी मकान में था। इस जगह पर आपने अपने वालिद साहब के हुक्म से काम शुरू किया था, मगर वालिद साहब की वफात के बाद आपके बड़े भाई सुल्तान अहमद साहब ने कहा कि ये मकान मेरे रुपए से खरीदा गया था, इसलिए आप ये बात लिख कर दे दें। आपने बड़ी खुशी से ये लिख दिया कि मकान के पैसे मेरे भाई साहब ने दिए थे और शागिर्दों से कहा कि दवाइयां उठाकर फलां मस्जिद के कमरे में रख दो, और उसी वक्त मकान खाली कर दिया। शहर में एक सरकारी जमीन थी, आपने अपने एक दोस्त मिस्त्री से कहा कि तुम इस पर मकान बनाओ, एक हिंदू से कहा कि तुम रुपया दे दो। मकान बनना शुरू हो गया। वहाँ के तहसीलदार ने कहला भेजा, एक तो मकान बगैर इजाजत बनाना ठीक नहीं, फिर हुकूमत की जमीन में मकान बनाना कानून के खिलाफ है। हमने डिप्टी कमिश्नर को रिपोर्ट कर दी है, जिसका नतीजा ये होगा कि बना बनाया मकान गिरा दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर साहब मौके पर आए और आपसे कहा कि तुम जानते हो ये सरकारी जमीन है? आपने कहा हाँ, सारा शहर ही सरकारी जमीन है। उन्होंने पूछा वो किस तरह? आपने जवाब दिया कि अगर हुकूमत को इस शहर पर फौजी मैदान बनाना पड़े तो क्या शहर के लोग इनकार कर सकते हैं? उसने कहा नहीं कर सकते। आपने फरमाया बस इसी तरह हर जमीन हुकूमत की जमीन ही कहलाती है। तब उसने कहा कि आपका मकान कितने हिस्से में बन सकता है? आपने कहा एक तरफ सड़क है, दूसरी तरफ भी, इसके दरमियान जितनी जमीन है इस पर मकान बन सकता है। उसने कहा अभी शुरू कर दो। फिर कमेटी वालों से पूछा कोई एतराज है? उन्होंने कहा कि इनका मकान तो लोगों को फायदा पहुंचाता है। डिप्टी कमिश्नर साहब बोले कि आप मकान बनाएं। इस तरह अल्लाह की मदद से आपका मकान बन गया। मुंशी जमालुद्दीन साहब, रियासत भोपाल को आपसे बहुत मोहब्बत थी, इसकी वजह से वो चाहते थे कि आप दोबारा भोपाल तशरीफ लाएं। चुनाचे आपने उनकी दावत कबूल कर ली और भेरे से रवाना हो गए। कुछ मुद्दत तक वहाँ रहे, फिर रियासत की मुलाजमत छोड़कर वापस आ गए। इसके बाद महाराजा रणबीर सिंह, जो रियासत जम्मू और कश्मीर के वाली थे, की दावत पर वहाँ की मुलाजमत इख्तियार कर ली। 500 रुपए माहवार तनख्वाह मुकर्रर हुई। आपके हाथों से बहुत से ऐसे बीमार ठीक हुए जिनकी बीमारी बहुत मुश्किल समझी जाती थी। मुलाजमत के दौरान दीन हक की तबलीग करते रहे। तबलीग और तरबियत के एतबार से ये जमाना बहुत अहम था। आपको कुरान सुनाने का बहुत शौक था। एक दफा आपने हिंदुओं की मजलिस में चंद रोज कुरान सुनाया। वहाँ एक हिंदू अफसर का बेटा भी आता था, कहने लगा इन्हें कुरान सुनाने से रोको वरना मैं मुसलमान हो जाऊंगा। कुरान बड़ी अच्छी किताब है, इसका मुकाबला नहीं हो सकता, और नूरुद्दीन के सुनाने का तरीका भी बहुत खूबसूरत है। 1881 में एक राजे के साथ एक शहजादे की शादी पर तशरीफ ले गए। आप हाथी पर सवार थे, एक स्प्रिंग की वजह से आप जख्मी हो गए। जख्म खुदा खुदा करके ठीक हुआ तो एक घोड़ी पर रवाना हुए, लेकिन 4 मील बाद आगे जाने की ताकत ना रही तो किसी दोस्त ने पालकी का इंतजाम किया। आप उसमें लेट गए और शुक्रिया में कुरान मजीद याद करना शुरू कर दिया। 1 महीने का सफर था। जब आप जम्मू पहुंचे तो 14 पारे हिफ्ज कर चुके थे, बाकी बाद में याद किए। इस तरह आपको भी अपने बुजुर्गों की तरह कुरान शरीफ जुबानी याद करने की सआदत मिली। जिला गुरदासपुर के एक साहब शेख रुकनुद्दीन साहब ने बताया कि जिला गुरदासपुर के एक गांव कादियान में एक शख्स हजरत मिर्जा गुलाम अहमद साहब ने इस्लाम के हक में रिसाले लिखे हैं। आपने ये सुनकर हजरत साहब की खिदमत में खत लिखा और किताबें मंगवाई। मार्च 1885 से कुछ पहले की बात है कि आप हजरत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम का पहला इश्तिहार देखते ही परवानों की तरह जम्मू से कादियान पहुंचे और खुदा के इस बंदे को पहचान लिया। ये इश्तिहार हजरत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम ने अपने दावे से मुतालिक तमाम दुनिया के आलमों को भिजवाया था, और हजरत खलीफतुल मसीह अव्वल को ये इश्तिहार एक हिंदू के जरिए मिला था। हजरत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम दुआ में मसरूफ थे कि या अल्लाह अपने दीन हक की खिदमत के लिए मुझे कोई साथी दे। आपकी दुआएं आसमान तक पहुंची और खुदा ने कश्मीर से हजरत मौलवी नूरुद्दीन साहब जैसा बेहतरीन साथी भेज दिया, और वो खबर पूरी हो गई कि इमाम मेहदी के साथी कश्मीर से भी आएंगे। इस वजह से आपका आना एक निशान था। हजरत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम भी फरमाते थे कि खुदा ताला ने मेरी दुआएं कबूल की और मुझे एक मुखलिस प्यार करने वाला दोस्त दिया, जिसका नाम उसकी नौरानी सिफात की तरह नूरुद्दीन है। इस्लाम के सरदारों में से है, बुजुर्गों की नस्ल से है। मुझे आपके मिलने से ऐसी खुशी हुई है कि गोया कोई अपने ही जिस्म का टुकड़ा मिल जाए, और मैं इस तरह खुश हुआ जैसा कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर फारूक के मिलने से हुए थे। मुझे सारे गम भूल गए जब मैंने आपको देखा। मुझे यकीन हो गया कि आप ही मेरी दुआओं का नतीजा हैं। फसल खिताब की तसनीफ। आप जल्द ही दोबारा कादियान तशरीफ लाए और हजरत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम से अर्ज की कि आपके लिए क्या खिदमत करूं? फरमाया खिदमत यही है कि ईसाइयों के मुकाबले पर एक किताब लिखें। चुनाचे आपने एक किताब लिखी जो ईसाई मजहब के खिलाफ बहुत अच्छी किताब थी, और बास जजों तक ने आपको इस पर मुबारकबाद भी दी। इस किताब का नाम फसलुल खिताब है। आपने नौकरी से इस्तीफा देकर हजूर की खिदमत में आने का इरादा कर लिया। हजूर अलैहिस्सलाम को इल्म हुआ تو آپ نے مشورہ دیا کہ نوکری بالکل نہ چھوڑیں۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کی مرضی کے مطابق آپ کا استعفیٰ ہی منظور نہ ہوا، اور آپ کچھ دیر ریاست کشمیر میں ہی بیٹھ کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دوستی کا حق ادا کرتے رہے۔ کشمیر میں آپ نے مسلمانوں کی بہت مدد کی۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی ایک انجمن بنائی اور حضرت خلیفۃ المسیح الاول ہمیشہ اس کی مدد کرتے رہے۔ ایک برہمن خاندان کا نوجوان آپ کی دعوت اللہ سے مسلمان ہو گیا، اور آپ کی وجہ سے ایک مسلمان خان بہادر شیخ عبداللہ اسمبلی کا ممبر بن گیا۔ پہلی بیعت۔ حضرت مولوی صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں یہ درخواست کر رکھی تھی کہ آپ جب بھی بیعت لیں تو سب سے پہلے بیعت میری ہو۔ جب حضور علیہ السلام کو خدا کی طرف سے بیعت کا حکم ملا تو 23 مارچ 1889 کو حضرت مولوی صاحب نے سب سے پہلے بیعت کی برکت حاصل کی، اور آپ کی درخواست پر حضور نے اپنے قلم سے بیعت کے الفاظ لکھ کر دے دیے۔ 27 دسمبر 1891 کو نماز ظہر کے بعد بیت اقصی قادیان میں سب سے پہلا جلسہ سالانہ ہوا، اس میں 75 احمدی دوستوں نے حصہ لیا۔ اس جلسے کی برکت سے حضرت مولوی صاحب نے بھی فائدہ اٹھایا، اور آپ نے اسی سال جلسے کے مہمانوں کے لیے قادیان میں ایک مکان بنوایا۔ ستمبر 1892 میں آپ اپنے وطن بھیرا واپس تشریف لے آئے اور ایک بہت بڑا ہسپتال اور مکان بنانا شروع کر دیا۔ ابھی یہ کام ختم نہ ہوا تھا کہ کسی کام سے لاہور تشریف لائے اور وہاں سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ملنے قادیان تشریف لے گئے۔ حضور نے فرمایا، اب تو آپ فارغ ہیں، یہاں رہیں۔ آپ سمجھے 2-4 روز کے لیے فرماتے ہیں، ایک ہفتہ خاموش رہے۔ پھر حضور نے فرمایا، آپ اکیلے ہیں، اپنی بیوی کو بھی بلوا لیں۔ تب آپ سمجھے زیادہ دن رہنا پڑے گا، اور مکان اور ہسپتال کا کام بند کروا دیا۔ چند روز بعد حضور نے فرمایا، کتابوں کا شوق ہے، یہی منگوا لیں۔ پھر ایک روز فرمایا، دوسری بیوی بھی یہی بلوا لیں۔ پھر فرمایا، وطن کا خیال چھوڑ دیں۔ اور پھر آپ نے خواب میں بھی کبھی وطن نہ دیکھا۔ قادیان آنے کے بعد کئی لوگوں نے آپ کو کہا، قادیان کی بجائے لاہور یا امرتسر میں ہسپتال بنا لیں، مگر آپ نے ان بڑے شہروں کے بجائے قادیان جیسا چھوٹا گاؤں پسند کیا، اور اپنے پیارے آقا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ رہنے لگے۔ صبح سویرے بیماروں کو دیکھتے، اس کے بعد لوگوں کو قرآن و حدیث اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب پڑھایا کرتے۔ نماز عصر کے بعد روزانہ قرآن مجید کا درس دیتے تھے۔ مہمانوں کی امانتیں اپنے پاس رکھتے، غریبوں کی مدد کرتے، احمدیوں کو اچھے کاموں کے کرنے اور برے کاموں سے بچنے کی نصیحت کرتے رہتے تھے۔ صبح سے شام تک سوائے نمازوں کے وقت کے ایک ہی جگہ بیٹھے رہتے تھے، جس میں صرف چٹائی بچھی ہوتی۔ صبح کے وقت عورتوں میں بھی قرآن مجید کا درس دیا کرتے تھے۔ بیت اقصی میں نماز جمعہ پڑھاتے۔ حضرت مولوی عبد الکریم صاحب کی وفات کے بعد نمازیں بھی پڑھاتے رہے۔ آپ کو باقاعدہ سیر کی عادت نہ تھی، لیکن کبھی کبھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام آپ کو اپنے ساتھ سیر کے واسطے لے جایا کرتے تھے۔ جب قادیان میں کالج بنا تو آپ اس میں عربی پڑھاتے رہے۔ صدر انجمن احمدیہ کے صدر تھے۔ قادیان میں آپ کے خرچ کی صورت بظاہر ڈاکٹری کے سوا اور کچھ نہ تھی۔ آپ فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے میری ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ جنگ مقدس میں شمولیت۔ 22 مئی سے 5 جون 1893 تک امرتسر میں ایک مشہور مباحثہ ہوا، جسے جنگ مقدس کہتے ہیں۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور عیسائیوں کے پادری عبداللہ آتھم کے درمیان تھا۔ اس مباحثے میں حضرت خلیفۃ المسیح الاول بھی تھے۔ ایک دفعہ کسی عیسائی نے سوال کیا کہ 15 دن امرتسر میں بحث ہوتی رہی، مگر نتیجہ کیا نکلا؟ آپ نے فرمایا، 4 نتیجے نکلے۔ اول، عیسائیوں جیسا جھگڑالو دنیا میں کوئی نہیں۔ دوسرے، مرزا صاحب بڑے حوصلے والے ہیں۔ تیسرے، اب عیسائی ایک منٹ کے لیے بھی کسی مذہب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ چوتھے، ہم بادشاہ ہیں۔ یہ 4 نتائج تو میں نے پہلے ہی دن نکال لیے تھے، باقی 15 دنوں میں تو اور بہت سے نتیجے نکلے۔ عیسائی نے ان کی وجہ پوچھی۔ آپ نے جواب دیا، نمبر 1، حضرت مرزا صاحب نے ایک اصول بتایا تھا کہ عقل مند جو دعویٰ کرے اس کی دلیل دے، اپنی طرف سے کچھ نہ کہے۔ آپ وعدے کے باوجود اس کی طرف نہیں آئے، اس لیے جھگڑالو ہیں۔ نمبر 2، مرزا صاحب کا حوصلہ بہت بڑا ہے کہ 15 دن تک تم سے بحث کرتے رہے، میرے جیسا پہلے ہی دن ختم کر دیتا۔ نمبر 3، آپ اپنے مذہب کی سچائی کی دلیل کسی اور مذہب کے سامنے نہیں دے سکتے، اس لیے کسی مذہب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نمبر 4، ہم اس لیے بادشاہ ہیں کہ ہمارے دعوے اور جواب کی دلیل ہماری پاک کتاب قرآن مجید میں موجود ہے۔ قبر مسیح کا انکشاف۔ ایک بزرگ خلیفہ نور الدین صاحب جمونی ایک دفعہ محلہ خان یار سری نگر سے گزر رہے تھے کہ ایک قبر پر انہوں نے ایک بوڑھے اور بڑھیا کو بیٹھے دیکھا۔ ان سے پوچھا، یہ کس کی قبر ہے؟ جواب دیا، نبی صاحب کی۔ انہوں نے کہا، یہاں نبی کہاں سے آ گیا؟ उन्होंने जवाब दिया, ये नबी दूर से आया था और कई सौ साल पहले आया था और ये कबर शहजादा नबी आसिफ की कबर के नाम से मशहूर है। खलीफा नूरुद्दीन साहब जमुनी ने हजरत खलीफतुल मसीह अव्वल से जिक्र किया। एक दफा हजरत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम एक मजलिस में तशरीफ रखे हुए थे कि आपने फरमाया, मुझे मालूम होता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किसी ऐसी जगह की तरफ गए थे जैसे कश्मीर। इस पर हजरत खलीफतुल मसीह अव्वल ने खानियार वाली कबर का वाकया हजूर अलैहिस्सलाम को बताया। हजरत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम ने खलीफा जमुनी साहब को बुलाया और फरमाया कि इससे मुतालिक और मालूमात हासिल करें। दिसंबर 1896 के आखिर में लाहौर में तमाम मजाहिब का एक जलसा हुआ जिसकी सदारत आपने की। इस जलसे में सैयदना हजरत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम का मजमून अल्लाह ताला की खुशखबरी के मुताबिक सब मजहबों के मजामीन पर बाला रहा। 1898 के आगाज में कादियान से एक अखबार अल हकम निकलना शुरू हुआ और इसके कुछ अरसे बाद एक और अखबार अल बदर का इजरा हुआ। हजरत मौलवी नूरुद्दीन साहब दोनों अखबारों की बहुत मदद करते, पैसे से भी और अपने मजमून लिखकर भी। आपको बच्चों से बहुत मोहब्बत थी। कादियान में छोटे बच्चों की एक अंजमन हमदर्दाने इस्लाम थी। आप अक्सर वहाँ तशरीफ ले जाते और बच्चों को अपनी प्यारी प्यारी बातें सुनाते। आपके बेटे मियाँ अब्दुल हई साहब ने कुरान खत्म किया तो उस दिन आप बहुत खुश थे कि आपके लाडले बेटे ने आपकी सबसे प्यारी किताब खत्म की थी। मियाँ अब्दुल हई साहब कुरान खत्म करके आए तो आपने फरमाया, बेटा हम तुमसे 10 बातें चाहते हैं, इनमें से 1/10 आज तुमने हासिल कर ली हैं। कुरान शरीफ पढ़ो, फिर इसे याद करो, फिर इसका तर्जमा पढ़ो, फिर इस पर अमल करो, फिर इस तरह सारी जिंदगी गुजारो यहाँ तक कि तुम्हें मौत आ जाए। कुरान पढ़ाओ, फिर याद करवाओ, फिर तर्जमा सुनाओ, फिर अमल करवाओ, फिर इसी हालत में तुमको मौत आ जाए। आपने हजरत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक इस खुशी में एक बहुत बड़ी दावत का इंतजाम किया। हजरत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम ने हजरत मौलवी नूरुद्दीन साहब को बहिश्ती मकबरे की आमद और खर्च का हिसाब रखने का इरशाद फरमाया। इसके बाद सदर अंजमन अहमदिया का सदर मुकर्रर फरमाया। हजरत खलीफतुल मसीह अव्वल ने 1906 में लड़कों और लड़कियों को नमाज समझाने के लिए एक रिसाला भी जारी किया जो बहुत पसंद किया गया। कुदरत सानिया का आगाज। हजरत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम की बरकतों वाली जिंदगी के आखिरी चंद दिन आपके लिए बहुत सब्र के दिन थे। आखिरी बीमारी में हजूर ने आपको बुलवाया और फरमाया, कोई दवाई बतलाएं। साथ ही फरमाया, हकीकत में तो दवा आसमान पर है, आप दुआ भी करें और दवा भी, मगर खुदा का फैसला यही था और खुदा के इस जर्नैल की वापसी का वक्त आ गया था, कोई दवा काम ना आई और 14वीं सदी का ये रूहानी सूरज इस जहान को मुनव्वर करके अगले जहान में चमकने के लिए इस दुनिया से गुरूब हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम की वफात के वक्त लोग अपने हवास खो बैठे थे, जमात को बहुत सदमा था, लेकिन जो शख्स उस वक्त सब्र से काम लेकर जमात को तसल्ली दिला रहा था वो हजरत खलीफतुल मसीह अव्वल थे। सब अहमदियों ने मिलकर आपसे बैत खिलाफत की दरख्वास्त की तो आपने फरमाया, मैं दुआ के बाद जवाब दूंगा। चुनाचे पानी मंगवाया, नमाज नफल अदा की, सजदे में गिरकर बहुत रोए। नमाज से फारिग होने के बाद फरमाया, चलो हम सब वहाँ चलें जहाँ हमारे आका का जिस्मे मुबारक पड़ा है। चुनाचे आप तमाम लोगों समेत बाग में तशरीफ ले गए। उस वक्त हजूर अलैहिस्सलाम की नाशे मुबारक बाग में रखी थी। सब लोग इर्द गिर्द जमा थे, जहाँ हजरत मुफ्ती मोहम्मद सादिक साहब ने खड़े होकर तमाम जमात की तरफ से एक तहरीर पढ़ी जिसमें आपकी खिदमत में बैत की दरख्वास्त की थी और इस पर सब अहमदियों के दस्तखत भी थे। आपने लोगों के सामने एक तकरीर की, फरमाया, मेरी पिछली जिंदगी पर गौर कर लो, मैं कभी इमाम बनने का ख्वाहिशमंद नहीं हुआ, अगर ख्वाहिश है तो ये कि मेरा मौला मुझसे राजी हो जाए। फिर फरमाया, मैं ये बोझ सिर्फ अल्लाह ही के लिए उठाता हूँ। इस दर्द भरी तकरीर पर सब ने अर्ज किया, हम सब आपका हर हुक्म मानेंगे, आप हमारे इमाम बने। चुनाचे उस जगह 1200 के करीब लोगों ने बैत की। मर्दों के बाद औरतों ने भी बैत की। सबसे अव्वल बाकायदा बैत करने वाली हजरत सैयदा नुसरत जहां बेगम साहिबा हजरत अम्मा जान थी। खिलाफत के वक्त आपकी उम्र 67 साल के करीब हो चुकी थी। अब आपके कंधों पर खिलाफत का बोझ भी आन पड़ा। जब आप अकेले होते तो हजरत खलीफतुल मसीह सानी से फरमाते, मियाँ जब से हजरत साहब फौत हुए हैं मुझे अपना जिस्म खाली मालूम होता है, दुनिया खाली खाली नजर आती है। मैं लोगों में चलता फिरता और काम करता हूँ मगर फिर भी लगता है दुनिया में कोई चीज भी बाकी नहीं रही। शुरू में अक्सर वक्त आप तन्हाई में गुजारते, दुआ में मसरूफ रहते, दुआ के लिए एक अलहदा कमरा बना दिया गया था। जमाना खिलाफत के बाज़ नुमाया काम। आपकी खिलाफत के ज़माने में जो काम नुमाया अहमियत वाले हैं इनमें से चंद एक दर्ज ज़ैल किए जाते हैं। नंबर एक, आपकी खिलाफत के शुरू ही में बाकायदा बैतुल माल का महकमा कायम किया गया। नंबर दो, हज़रत मुसलह माऊद ने हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल के मशवरे से अंजुमन तशीज़ुल अज़हान के ज़ेर इंतज़ाम एक पब्लिक लाइब्रेरी कायम की। नंबर तीन, हज़रत खलीफा अव्वल की खिलाफत के शुरू ही से ये ख्वाहिश थी कि हज़रत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम की याद में एक दीनी मदरसा कायम होना चाहिए। 1 मार्च 1909 को आपने इसकी बुनियाद रखी, जिसका नाम हज़रत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम के एक मशहूर रफ़ीक हज़रत मौलाना शेर अली साहब की तजवीज़ के मुताबिक मदरसा अहमदिया रखा गया। नंबर चार, अखबार नूर जारी किया गया। नंबर पाँच, हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल ने 5 मार्च 1910 को बाद नमाज फजर अपने मुबारक हाथों से बैत नूर की बुनियाद रखी और बैतु जिक्र के मौजू पर एक तकरीर फरमाई। नंबर छः, इसी साल तालीमुल इस्लाम हाई स्कूल की अजीमुशान इमारत की बुनियाद भी रखी। नंबर सात, पहले बैत अक्सा चूंकि तंग थी इसलिए औरतें अभी तक जुम्मे में आकर खुतबा नहीं सुन सकती थीं। आपके वक्त में बैत अक्सा को बढ़ाने का काम मुकम्मल हुआ और 21 जनवरी 1910 के जुम्मे में अहमदी औरतों ने, जिनमें हज़रत अम्मा जान भी शामिल थीं, नमाज पढ़ी। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को 1905 में ख्वाब के ज़रिए यह नज़ारा दिखाया गया था कि हज़रत मौलवी नूरुद्दीन साहब खलीफतुल मसीह अव्वल घोड़े पर से गिर पड़े हैं। ये ख्वाब पूरी हुई और इस हादसे में जो 70 साल की उम्र में आपको पहुंचा, आपके सर पर सख्त चोट लगी और बहुत खून बह गया, जिसकी वजह से 3 साल तक ये बीमारी किसी न किसी शक्ल में चलती रही और शुरू में 7 माह तो आपको बिस्तर पर ही रहना पड़ा। आप बीमारी के दौरान नमाज हज़रत मुसलह माउद से पढ़वाते थे। हज़रत मुफ्ती मोहम्मद सादिक साहब फरमाते हैं कि इस बीमारी में एक दफ़ा आपने रात के वक्त कलम दवात मंगवाए और एक कागज़ पर सिर्फ 2 लफ्ज़ लिखे, खलीफा महमूद। फिर अपने एक शागिर्द को वो कागज़ दिया कि लिफाफे में बंद करके अपने पास रखो, मगर जब आप ठीक हो गए तो आपने वो लिफाफा लेकर फाड़ डाला। मगर इसके बाद भी अपनी वफात तक मुख्तलिफ तरीकों से अल्लाह की मर्जी के मुताबिक इस ख्याल का इजहार फरमाते रहे कि आइंदा खिलाफत इस वसीयत के मुताबिक ही होगी। 1913 के जलसा सलाना के बारे में अहमदी दोस्तों ने फैसला किया कि वो 2 दिन हो, मगर हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल ने यह हुक्म दिया कि जलसा प्रोग्राम के मुताबिक 26 से 28 दिसंबर तक 3 दिन रहेगा। चुनाचे इसी के मुताबिक हुआ। नंबर 8, अंजुमन अंसारुल्लाह का क़याम। फरवरी 1911 में हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल की इजाज़त से हज़रत मुसलह माउद ने एक अंजुमन अंसारुल्लाह की बुनियाद डाली। हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल ने फरमाया, मैं भी आपके अंसारुल्लाह में शामिल हूँ। नंबर 9, हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल ने हज़रत शेख यकूब अली साहब और हज़रत शेख मोहम्मद यूसुफ साहब को संस्कृत पढ़ने के लिए एक पंडित का इंतज़ाम किया और इसका खर्च खुद उठाया। नंबर 10, हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल की ज़िंदगी के हालात शाये करने का सबसे पहला ख्याल अकबर शाह खान साहब नजीब आबादी के दिल में आया। चुनाचे उनकी ख्वाहिश पर हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल ने अपने हालात ज़िंदगी लिखवाए और 1912 के आखिर में मिरकातुल यकीन फ़ी हयात नूरुद्दीन के नाम से शाये किए गए। नंबर 11, रिसाला अहमदी ख़वातीन। अहमदी औरतों की तरबियत के लिए उस वक्त कोई रिसाला नहीं था, चुनाचे 1912 से रिसाला अहमदी ख़वातीन निकलना शुरू हुआ। नंबर 12, अखबार अल फजल। हज़रत साहिबजादा मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब ने 18 जून 1913 से अखबार अल फजल जारी फरमाया। ये नाम खुद हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल ने तजवीज़ फरमाया था। नंबर 13, ज़िला गुरदासपुर में एक गाँव अठवाल है जिसके गैर अहमदी दोस्तों ने मौलवी सनाउल्ला साहब को अहमदियों से बहस के लिए बुलवाया, मगर जब उन्हें बताया गया कि यह बहस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के मसले पर होगी तो उन्होंने साफ कह दिया कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का जनाजा ही पढ़ दो, जिस पर सारा गांव अहमदी हो गया। नंबर 14, 1913 का जलसा सलाना आपकी खिलाफत का आखिरी जलसा सलाना था, इसमें आपने 2 ज़बरदस्त तकरीरें की। आखिरी अय्याम और वफात। ज़ख्म की बीमारी से ठीक होने के बावजूद आपकी सेहत गिर रही थी और दीन के काम बहुत ज़ोर से जारी थे। कि जनवरी 1914 में रात को पेशाब के लिए उठे तो गिर पड़े, यही आपकी आखिरी बीमारी का आगाज़ था। फिर भी खुदा का कलाम सुनाने में नागा नहीं होने दिया, दरस जारी रखा। तबीयत ज़्यादा कमज़ोर हो गई तो शाम का दरस घर में जारी कर दिया, औरतों में दरस देते रहे बावजूद सख्त ज़ोफ़ के खड़े होकर दर्स देते। डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि आराम करें, लेकिन आपने फरमाया, मुझे इससे ताकत मिलती है। 2 फरवरी को ऐसे दर्द से दर्स दिया कि सब पर रिक्कत तारी हो गई, बास चीखे मार कर रोने लगे। उसी रोज लोगों के कंधों पर सहारा लेकर पहुंचे और बैठे बैठे दर्स दिया। फरमाया कि जब मैं मरूंगा मेरी औलाद के वास्ते चंदे हरगिज ना लेना, इनकी मस्कीन या यतीम की तरह मदद ना करना। मेरी औलाद को भी खुदा उसी तरह देगा जिस तरह उसने मुझे दिया। अपने घर वालों को नसीहत फरमाई कि दुखों में कभी ना घबराना, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहना। 27 फरवरी को जुमे की नमाज के बाद डोली में बैठकर हजरत नवाब मोहम्मद अली खान साहब की कोठी में तशरीफ ले गए। रास्ते में बोर्डिंग हाउस के पास तालिब इल्मों ने आपका इस्तकबाल किया। इस पर आपने डोली ठहराई, बच्चों के लिए दर्द दिल से दुआ मांगी और मौलवी मोहम्मद अली साहब को बुलवा कर इरशाद फरमाया कि मुझे तो अल्लाह ताला बहुत ही प्यारा है, इसने दो काम बताए हैं, तवाजो और खाकसारी। इसकी मेरी तरफ से बच्चों को नसीहत कर दो और कहो हर लड़का खैरात करे और हर लड़का इस्तिगफार करे। चुनाचे मौलवी मोहम्मद अली साहब ने मगरिब के बाद बच्चों को ये नसीहत की। 4 मार्च को नमाज असर के बाद हजरत खलीफतुल मसीह अव्वल को अचानक जोफ महसूस होने लगा। उसी वक्त आपने हजरत मौलवी सरवर शाह साहब को कलम दवात लाने का हुक्म दिया और लेटे लेटे ये वसीयत लिखी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। खाकसार बकायमी हवास ये लिखता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदु रसूलुल्लाह। मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरे घर माल नहीं, इनका अल्लाह हाफिज है। इनकी परवरिश यतामा और मसाकीन के हिसाब से ना हो, कुछ कर्जाए हसना जमा किया जाए, लायक लड़के अदा करें, या कुतुब जायदाद वक्फ अलल औलाद हो। मेरा जानशीन मुत्तकी हो, हर दिल अजीज हो, आलिम बाअमल हो, हजरत साहब के पुराने और नए अहबाब से सलूक में चश्मपोशी दरगुजर को काम में लाए। मैं सबका खैर खा था, वो भी खैर खा रहे, कुरान और हदीस का दरस जारी रहे। मौलवी मोहम्मद अली साहब ने आपके हुक्म पर 3 दफ़ा वसीयत पढ़कर सुनाई। इसके बाद आपने वो कागज़ हजरत नवाब मोहम्मद अली खान साहब को दे दिया। फरमाया महफूज रखें। आपकी ये आखिरी वसीयत गोया एक बिजली थी जिसने हर शख्स को ये एहसास दिला दिया कि उनका प्यारा और महबूब इमाम, जिसकी बरकतों से वो एक अरसे तक फ़ायदा उठाते रहे, अब रुखसत होने वाला है। दिल इस खतरे से कांप रहे थे, डॉक्टरों से मशवरे किए गए, आजजी और सोच से दुआएं होने लगीं। 13 मार्च बरोज जुमा आपकी हालत नाजुक हो गई। आखिर वो दर्द वाली घड़ी आ गई जिसके ख्याल से मोमिनों के दिल कांप रहे थे। बाद दोपहर 2:20 पर नमाज की हालत में आप अपने मौला से जा मिले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वफात से पहले आपने अपने बेटे मियां अब्दुल हई साहब को बुलाया और फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर मेरा ईमान है और इसी पर मैं मरता हूँ। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब असहाब को मैं अच्छा समझता हूँ। हजरत मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब को मसीह माऊद और खुदा का बरगजीदा इंसान समझता हूँ। मुझे उनसे इतनी मोहब्बत थी कि जितनी मैंने उनकी औलाद से की तुमसे नहीं की। कौम को खुदा के सुपुर्द करता हूँ। तुम्हें नसीहत करता हूँ कि खुदा की किताब को पढ़ना, पढ़ाना और अमल करना। मैंने बहुत कुछ देखा पर कुरान जैसी चीज़ ना देखी। बेशक ये खुदा की किताब है, बाकी खुदा के सुपुर्द। मियाँ अब्दुल हई साहब के अलावा आपने अपनी बेटी अमतुल हई साहिबा को पैगाम दिया कि मेरे फोत हो जाने के बाद मियाँ साहब यानी हजरत खलीफतुल मसीह सानी से कह देना कि वो औरतों में भी दरस दिया करें। जुम्मे के दिन 2:15 के करीब हजरत खलीफतुल मसीह अव्वल की वफ़ात हुई। तकरीबन 26 घंटे के बाद दूसरे दिन नमाज असर के बाद जमात अहमदिया ने हजरत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब को दूसरा खलीफा मुंतखब कर लिया। ये इंतखाब बैत नूर में हुआ। इंतखाब से पहले हजरत नवाब मोहम्मद अली खान साहब ने उन 2000 लोगों को हजरत खलीफतुल मसीह अव्वल की वसीयत पढ़कर सुनाई। बैत के बाद दुआ हुई, फिर हजरत खलीफतुल मसीह सानी ने खड़े होकर दर्द से भरी हुई तकरीर फरमाई। फरमाया, मैं कमज़ोर और बहुत ही कमज़ोर इंसान हूँ, मगर मैं खुदा से उम्मीद रखता हूँ कि जब उसने मुझे खलीफा बनाया तो वो ये बोझ उठाने की भी ताकत देगा। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगा, तुम मेरे लिए दुआ करो। दुआ और तकरीर के बाद हजरत खलीफतुल मसीह सानी ने तालीमुल इस्लाम हाई स्कूल के मैदान में हजरत खलीफतुल मसीह अव्वल की नमाज जनाजा पढ़ाई, जिसमें तकरीबन 2000 मर्द शरीक हुए। फिर सब हजरत खलीफतुल मसीह अव्वल की नाशे मुबारक लेकर बहिश्ती मकबरे की तरफ रवाना हुए और उस मुबारक इंसान के मुबारक जिस्म को हजारों दुआओं के साथ उसके महबूब سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پہلو میں سلا دیا۔ آپ نے ایک دفعہ سر سید سے خط لکھ کر پوچھا کہ جاہل آدمی پڑھ کر عالم بنتا ہے، عالم ترقی کر کے حکیم ہو جاتا ہے، حکیم ترقی کرتے کرتے صوفی بن جاتا ہے، مگر جب صوفی ترقی کرتا ہے تو کیا بنتا ہے؟ سر سید مرحوم نے جواب دیا، جب صوفی ترقی کرتا ہے تو نور الدین بنتا ہے۔ توکل علی اللہ۔ آپ کی زندگی کی سب سے پہلی اور نمایاں بات اللہ پر توکل ہے، جو آپ کی زندگی میں بڑی شان سے نظر آتی ہے۔ آپ کا خدا سے ایسا ذاتی تعلق تھا کہ آپ کی ہر ضرورت پوری کرنے کا خدا انتظام کر دیتا، اور اس بارے میں آپ کی زندگی میں اتنے واقعات آئے جن کا شمار ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، میری آمدنی کا راز خدا نے کسی کو بتانے کی اجازت نہیں دی۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی فرماتے ہیں، ایک دفعہ آپ کو کوئی ضرورت پڑی تو آپ نے دعا مانگی، مسلح اٹھایا تو ایک پونڈ پڑا ہوا تھا۔ اسی طرح ایک کشمیری دوست نے 400 روپیہ بطور امانت دیے، چند دن بعد اس کا تار آ گیا کہ مجھے روپے کی ضرورت ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول اس وقت اپنے ہسپتال میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کچھ وقت کے بعد شاہ پور کے 2 ہندو رئیس آئے اور ایک تھیلی میں پھل اور 400 روپیہ نذرانہ پیش کیا۔ عشق قرآن۔ دوسری بات آپ کی سیرت میں عشق قرآن تھی۔ آپ فرماتے ہیں، مجھے قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز پیاری نہیں لگتی، ہزاروں کتابیں پڑھی ہیں، ان سب میں مجھے خدا ہی کی کتاب پسند آئی۔ میرا تو اعتقاد ہے کہ اس کتاب کا ایک رکوع انسان کو بادشاہ سے بڑھ کر خوش قسمت بنا دیتا ہے۔ اسی طرح فرمایا، میں نے قرآن کریم بہت پڑھا ہے، اب تو یہ میری غذا ہے، اگر 8 پہر میں میں خود نہ پڑھوں اور نہ پڑھاؤں اور میرا بیٹا سامنے آ کر نہ پڑھے تو مجھے سکون نہیں ملتا، سونے سے پہلے وہ آد پارا مجھے سنا دیتا ہے۔ غرض، میں قرآن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، وہ میری غذا ہے۔ ایک دفعہ قرآن شریف کے درس کے لیے بیت اقصی کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، آپ کو راستے میں اطلاع ملی کہ صوفی غلام محمد صاحب بی اے نے قرآن مجید حفظ کر لیا ہے۔ آپ وہیں ایک دکان کی چٹائی پر سجدہ شکر میں گر گئے۔ آپ تیز بخار میں بھی درس قرآن کا ناغہ نہ ہونے دیتے تھے۔ ایک دفعہ بیت اقصی میں درس دیتے ہوئے اچانک شدید زوف ہو گیا، بیٹھ گئے، پھر لیٹ گئے، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے، چلنے کی طاقت نہ رہی، چار پائی پر اٹھا کر لائے گئے۔ مگر راستے میں جب بیت مبارک کے پاس پہنچے تو فرمایا، مجھے گھر نہ لے جاؤ، بیت مبارک میں لے جاؤ۔ باوجود اس تکلیف کے نماز مغرب کے بعد ایک رکوع کا درس دیا، پھر لوگ چارپائی پر اٹھا کر گھر تک لائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے بے حد محبت۔ آپ کی زندگی کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی محبت اور اطاعت میں اونچے مقام پر تھے۔ قادیان سے 1 منٹ باہر جانا اپنی موت سمجھتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص 1000 روپیہ روزانہ بھی مجھے دے تو پھر بھی میں حضرت صاحب کی محفل چھوڑ کر قادیان سے باہر جانا پسند نہ کروں گا۔ ایک دفعہ آپ کو اس حال کی بیماری تھی، حضرت صاحب کی طرف سے تقریر کا حکم ملا، چنانچہ اسی وقت باہر چلے گئے اور قریباً 3 گھنٹے تک تقریر کی۔ ایک دفعہ فرمایا، اگر میری لڑکی ہو اور مرزا صاحب اسے 100 سال کے بوڑھے سے بیانا چاہیں تو میں ہرگز انکار نہیں کروں گا۔ ایک دفعہ نواب خان صاحب مرحوم تحصیلدار نے آپ سے عرض کیا کہ حضرت صاحب کی بیعت سے کیا فائدہ ہوا؟ فرمایا، مجھے بہت فائدے حاصل ہوئے ہیں۔ پہلے مجھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بذریعہ خواب ہوا کرتی تھی، اب بیداری میں بھی ہوتی ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے پیار کرنے والے دوستوں میں سب سے زیادہ جس شخص کی تعریف فرماتے تھے وہ حضرت مولوی نور الدین صاحب خلیفۃ المسیح الاول تھے۔ فرماتے ہیں، سب سے پہلے میں اپنے ایک روحانی بھائی کے ذکر کرنے کے لیے دل میں جوش پاتا ہوں، جن کا نام ان کے نور اخلاص کی طرح نور الدین ہے۔ میں ان کی بعض دینی خدمتوں کو جو اپنے مال حلال سے کر رہے ہیں ہمیشہ حسرت کی نظر سے دیکھتا ہوں کہ کاش وہ خدمتیں مجھ سے بھی ادا ہو سکتی۔ پھر فرمایا، آپ مومنوں کا فخر ہیں، آپ ایک بے مثال وجود ہیں۔ پھر فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ایسا اعلیٰ درجے کا صدیق دیا، جے خوش بو دے اگر ہر یک ز امت نور دین بو دے، ہمیں بو دے اگر ہر دل پرز نور یقین بو دے۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر امت میں سے ہر ایک نور الدین ہوتا، یہ تبھی ہوتا اگر ہر دل نور یقین سے بھرا ہوتا۔